शन्नो मित्रः शन्नो शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मानवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 वसुदेवसुतं देवं पञ्चचानूरमः देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगुरु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपा वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये बोलो कृष्ण कन्हैया
लाल की जय
भागवत भगवान
की जय
व्यास जी महाराज
की जय
सुखदेव जी महाराज
की जय
प्रेमपुरी जी महाराज
की जय
सब संतन की
जय
ओम नमः
पार्वती पतये हर हर
परमात्मा की अहेतुक कृपा हमारे पूर्वज ऋषि मुनि समस्त शास्त्रों की कृपा और उसी अनुसार हम सब लोग उस परमात्मा तत्व जो इस जगत का कारण है उसके विषय में यहां पर श्रवण करने के लिए हम आए हुए हैं। संतगण, यहां के सभी ट्रस्टीगण, विद्वत ब्रह्मवृंद, यजमान, समस्त श्रोतागण, आने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जगत में यथार्थ क्या है। हम लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं एक ही बात का विश्लेषण हो रहा है कि इस जगत में यथार्थ क्या है, इस जगत का सार क्या है। और उस सार को समझने के लिए किसी न किसी माध्यम का हमें आश्रय लेना चाहिए और वो आश्रय है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हुए भगवान वेद व्यास जी ने एक सुंदर मंगलाचरण किया है। हम लोग जैसे कोई कार्य प्रारंभ करने से कोई मंगल श्लोक बोलते हैं, कोई स्वस्ति वाचन करते हैं, वैसे ही वेद व्यास जी ने एक मंगलाचरण का यहां पर एक श्लोक कहा है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयाजितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिधदां यथा विनमयो यत्र सर्वो विषा धाम्ना सेन निरस्तपुहकम् सत्यं परम धीमहि। मंगलाचरण का ये मंत्र है, श्लोक है, और इसमें उस परब्रह्म को स्मरण किया गया है। जन्माद्यस्य, जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है। वेद व्यास जी ने ही ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ, और उस ग्रंथ में सूत्र है, प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और वो ब्रह्म जिज्ञासा किसको करनी चाहिए उसका वहां पर विस्तार हुआ है। वेदांत श्रवण का अधिकारी कौन है? वेदांत श्रवण के लिए अधिकारी होता है, जब तक अधिकार न हो उस प्रकार का वेदांत आप श्रवण कर सकते हैं, परंतु जो विधि विधान से उस वेदांत श्रवण के मुख्य को वो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। वो तो पहले की बात है, आजकल की बात नहीं। आज तो आप सब, क्योंकि भगवान ने 5000 साल पहले ये बात कह दी कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहेते महतो भयात्। आप थोड़ा सा भी काम करो, थोड़ा सा भी धर्म करो, थोड़ा सा भी जाकर के सत्संग श्रवण करो, आवश्यक नहीं कि आप दिन भर उसी में लगे रहो। हमारा धर्म बहुत सरल है, सहज है, इतना उदार धर्म दुनिया में कोई नहीं है। आप किसी भी भगवान की, किसी प्रतिमा की, कहीं पर भी जाकर के अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये हमारा सनातन धर्म का ये बहुत बहुत विशेषता है। परंतु आपको वेदांत श्रवण करना है और सचमुच आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए एक विधि है। वहां पर ब्रह्मसूत्र में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें विवेक, वैराग्य, षड् संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार बातें आती हैं। उसके बाद में वो वेदांत श्रवण करने का अधिकारी बनता है। परंतु यहां पर वो बात न लेकर के, यहां पर तो हम सभी अधिकारी हैं, इसलिए सबका अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार को यहां पर प्रकट करने के लिए वेद व्यास जी ने यहां पर द्वितीय यहां पर सूत्र रखा, जन्माद्यस्यतः। ब्रह्मसूत्र का सीधा सीधा सा ये सूत्र है, ब्रह्मसूत्र में द्वितीय जो ये सूत्र है यहां सीधा सीधा वैसे के वैसे रख दिया। जो उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है, ऐसा पर ब्रह्म प्रथम जो यहां पर वाक्य है और अंतिम वाक्य, उसका हम ध्यान करते हैं। क्या कहा है? सत्यम परम धीमही। वो जो परमात्मा है वो सत्य है, उसका हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। कल जब हम लोगों ने महात्म्य श्रवण किया, उनको श्री कृष्णाय वयम नमः, हमने वहां पर नमस्कार किया, और यहां पर आज हम क्या कर रहे हैं? उस परम तत्व का ध्यान कर रहे हैं। वो कैसा है? हमारे बात में, हमारे विचारों में उसका स्वरूप कुछ हो सकता है, परंतु हमारा, हमारी श्रुति, हमारा वेद कहता है एकम तद विप्र बहुधा वदंती। एक ही परब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं जगत में। कोई भी धर्म में मानने वाला हो, उनको आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारा जो घर भगवान है वो सातवें आसमान में बैठा हुआ है। मानेंगे अवश्य, उन्होंने देखा नहीं कुछ, उनके कोई आए दूत, उनके पुत्र आए, उनके अनुयायी आए, उनके दूत आए, उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा है, उन्होंने मान लिया। परंतु हमारे यहां पर भगवान का बड़ा स्पष्ट स्वरूप है। हमारे वेदांत में, हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में भगवान का बड़ा स्पष्ट स्वरूप है। ये स्वरूप ये है कि जो उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण, वो परमात्मा। और वो कैसा है? जन्माद्यस्य तो, और वो अन्वय और व्यतिरेक रूप से वो विद्यमान है। हमारे यहां पर वेदांत का ये थोड़ा सा विषय है, क्योंकि वेदांत का प्रारंभ करने वाले वेद व्यास जी हैं, उन्होंने यहां पर थोड़ी सी वेदांत की बात कही है। अन्वय और व्यतिरेक, वो परमात्मा इस जगत में है, इसीलिए ये जगत सत्य भासता है। अगर वो परमात्मा इस जगत में न हो, उस परमात्मा का आश्रय न हो, ये जगत कुछ है ही नहीं। और जहां पर परमात्मा है ही नहीं, वहां पर वो जगत भी है ही नहीं, वहां पर वो अस्तित्व भी नहीं है। हम लोग उसको व्यवहार में भी देखते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले खाता पीता हम लोगों के साथ चर्चा करता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, और जाना तो सबको है, और एकाएक कोई ऐसी घटना घटती है और बोलते हैं कि अब वो नहीं रहा। एक सामान्य जीवन न रहने पर भी हम उसको कहते हैं कि अब वो नहीं रहा। हम सब जानते सब हैं, हमारे ध्यान में सब कुछ है, सब कुछ वस्तु है, हमारे संज्ञान में सब कुछ है, परंतु हम भूलने का प्रयत्न करते हैं और भूलने की दिशा में जाते हैं। ऐसा परमात्मा जो अन्वय व्यतीक रूप से यहां पर वो विद्यमान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती सूर्य, उसका, उसके विषय में चिंतन करते करते बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी भूल कर बैठते हैं, वो भी, उनको भी संशय होता है, उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं है। ब्रह्मा जी को भी एक बार मोह हुआ था ना, आप लोग आगे श्रवण करेंगे। तो ब्रह्मा जी जैसे जो साक्षात वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा के स्वरूप है, उनको भी मोहित होना पड़ता है, मोहित हो जाते हैं। मोह्यंति यत्सूरयः, जब ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं तो उनके अनंतर के जो देवता है वो तो मोहित होना उनका स्वाभाविक है। अब वो कैसे है?
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय।
हम लोग देखते हैं, यहां पर एक दृष्टांत देते हैं वेदव्यास जी, जैसे कभी कभी तेज में वारी का आभास होता है, तेज होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई राजस्थान से भी होंगे, कहीं कहीं से होंगे, जो रेगिस्तान होता है वहां पर गर्मियों के दिनों में वहां पर सूर्य तपता है, सूर्य तपता है, और सूर्य जब तपता है वहां पर दूर देखते हैं तो वहां पर कुछ झिलमिलाट दिखती है, जो सूर्य के किरणों से जो पृथ्वी पर पड़ती है ऐसा लगता है कि वहां पर जल है। इसलिए यहां पर उसको हम लोग यहां पर एक बात कही गई, उसको मृग जल कहा, और उसको देख करके मृग जो है उधर भागते रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वहां जल हो, जल हो। परंतु इसी प्रकार ये संसार दिख रहा है, ये संसार का स्वरूप उसी प्रकार है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो हो यत्त त्रिसर्गो विषाम। इसी प्रकार ये त्रिसर्ग जो कुछ देखने में आ रहा है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, ये सब इसी प्रकार का वो केवल भास रहा है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। उसके भीतर अस्तित्व अगर है वो केवल उस परमात्मा का है। धामना से न निरस्त कुहकम, जब उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं तो निरस्त हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है ना, वास्तविक वस्तु का जब ज्ञान होता है, जब आपको जो वास्तविक तत्व का जब ज्ञान हो गया तो उसके अंदर आपको कुछ रस नहीं आता है। जब हम लोग जादू देखते हैं ना, जादू वो भी सब समाप्त हो, हमारी पुरानी विद्याएं सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब वो जादूगरी अब टीवी ने ले ली। पहले के समय में ऐसे ऐसे जादूगर होते थे, ऐसे ऐसे जादूगर होते थे, आपको आपके उसी मंच पर कुछ किसी ने कहा कि एक आम का, आम की जो गुठली होती है वो लगा दी, उसका आम बड़ा कर दिया, उसके आम लग गए, और उसके बाद में आम बोले खाओगे, वो खाने योग्य होते नहीं है। परंतु ऐसे ऐसे जादू होती थी पहले के समय में, थोड़ा सा इको कम हो, ऐसे ऐसे जादू होती थी। परंतु वो जादू समाप्त होने के बाद में क्या वो आपको फल खाने को मिलेगा? नहीं, नहीं खाने को मिलेगा। इसी प्रकार जब उसको वास्तविक तत्व का आपको जब ज्ञान हो जाता है तो आपको लगता है कि इसमें कुछ था ही नहीं। तीन घंटा लोग बैठे रहते हैं, वो छाया चित्र देखते रहते हैं, और बाद में जब वो लाइट जल जाती है तो वहां पर पर्दा होता है, कुछ होता नहीं है, है? होता है कुछ, जो कुछ था वो पर्दे में दिखा और समाप्त हो गया। इसी प्रकार ये जगत है, जगत का आप यही समझना कि जगत का स्वरूप यही है, वो पर्दे पर केवल दिखता है और वहां पर कुछ होता है नहीं। अब जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप जब स्वप्न में होते हैं तो आपको सत्य दिखता है कि असत्य दिखता है, कैसा दिखता है? कोई कोई लोग जब स्वप्न में कोई ऐसी चीज दिखती है वहां पर चिल्ला पड़ते हैं, कोई बाजू में सोया हुआ कि क्या हुआ, कोई सपना देखा तुमने? सपने में वो सत्य भासता है। किसी के पीछे सांप दौड़ रहा हो तो सोचता है कि मैं भागू, लेकिन भाग नहीं सकता है, मुसीबत ही होती है, क्योंकि वो सपने में होता है। और सपना कब आता है? सपना आने का भी एक समय होता है, गहरी निद्रा में सपना आता नहीं है, ये ध्यान देना। जब आप गहरी निद्रा में सोए हो आपको सपना आता नहीं है, उसको सुसुप्ति बोलते हैं। आप दिन भर आपने काम किया हो, दिन भर आप थक गए हो और आपको जाते ही लेटते ही नींद आ गई हो, उसमें सपना नहीं आएगा। सपना कब आएगा? जब आपकी गहरी नींद पूरी हो जाए, आप ना अपने गहरी निद्रा में है ना जागे हुए हैं, उस समय आपकी वृत्ति पहले कहीं जाती है। आपने कभी उसका अनुभव किया हुआ, वही वस्तु आपको दिखती है जो आपने कभी जागृत में देखी है या सुनी है। जगत दो ही प्रकार के हैं, एक देखने वाला है और एक सुनने वाला है, उसके अलावा जगत कुछ है ही नहीं। जगत की स्थिति जो है वो दो ही प्रकार से है, एक तो जगत देखने में आता है कि जो दिखता है वो जगत है, और एक जो देखने में आता है वो सुनने में जो जगत है। आपने कुछ बातें सुनी होगी, कुछ चीजें देखी होगी, आपने जितना देखा है उतना सब जितना देखा है उतना जगत नहीं है, आपने सुना हुआ भी जगत है। हम लोग तो कभी चंद्रमा पर तो इसमें से कोई गया नहीं होगा, एकाध कोई जाके आया, उसने जो सुनाया हमने चंद्रमा को मान लिया कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर है, ये है वो है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने जैसे वो जगत, जैसे हम लोगों ने वो स्वप्न में जो देखा, वो जागने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व आपको किसी को सोते समय वो सात घड़े मिल गए सोने के, और उस समय उठा लिया आपने, और जब जग गए तो उसका अस्तित्व नहीं है। अब जब आप सो जाते हैं गहरी निद्रा में, आप कहां सोए हैं, कैसे सोए हैं, आप साधारण पलंग पर सोए हैं कि स्वर्ण मंडित पलंग पर सोए हैं, कि आप होटल में सोए हैं कि घर में सोए हैं, गहरी निद्रा में होते हैं तो आपको कुछ पता नहीं, वहां आप शून्य हो जाते हैं। और जब आप जगते हैं, बोलते हैं कि वो जो निद्रा वाला जो स्वप्न होता है वो संक्षिप्त स्वप्न होता है, परंतु ये बड़ा स्वप्न है। कौन सा? जो हम लोग जगे हुए हैं ये बड़ा स्वप्न है। इसलिए दोनों का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व नहीं है। जब उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब हमें वास्तविकता का पता लगता है, और उस समय वो केवल परमात्मा परमात्मा शेष रह जाता है। और यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हम उनको उनका ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का यहां पर ध्यान करते हुए। और वो परमात्मा कैसे है? सत्यम परम, परम सत्य है, उसके सिवाय जगत में कुछ वस्तु है ही नहीं। केवल परम सत्य अगर जगत में है तो केवल परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, हम सब यहां पर बैठे बैठे भले ही संपूर्ण समय हम उसका ध्यान न कर सके, कम से कम जब तक यहां पर बैठे हुए हैं वो जो परमात्मा तत्व है, बाकी सब त्याग करके भाग त्याग लक्षणा के द्वारा इदम नास्ति इदम नास्ति इदम नास्ति, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, अब शेष बचता क्या है? हम तो यहां पर रोज प्रतिदिन जब वेद मंत्र गाते हैं तब उस समय शांति मंत्र जब गाते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् जब गाते हैं तो पूर्ण ही है, केवल उसके सिवाय शेष कुछ रहता नहीं है। उस परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं, और उस परम सत्य का यहां पर विवेचन होने वाला है। कहा इस आगे वो संपूर्ण कथा में उसी परम तत्व का, क्योंकि जो परम तत्व है उसका विस्तार हो जाता है, केवल पूर्णता से ही काम नहीं होता है। अगर संसार की रचना करनी हो उसके लिए कुछ मिश्रण करना पड़ता है। ये व्यवहार में भी देखा जाता है कि आप जाओ किसी सोने के पास में, और आपके पास में 24 कैरेट सोना हो, उसको बोलो इसी का दागेना चाहिए मुझे, बोलेगा माता जी इसका अकेले का दागेना नहीं बनेगा, इसमें कुछ ना कुछ टांका तो लगाना पड़ेगा ना, और टांका सोने का नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। आपको मोतियों की माला पिरोनी हो तो उसमें कुछ दूसरी धातु का भी समावेश करना पड़ता है। ऐसे ही अगर संसार को देखना हो ना, तो संसार में दूसरे तीन गुण वहां पर भगवान ने आप मिला दिए हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इसलिए संसार दिखता है। और जिसके गुण हैं फिर उसमें चले जाते हैं, फिर यहां पर कुछ शेष नहीं रहता है, केवल सत्य रहता है। इसलिए ऐसे परम सत्य को हम लोग नमस्कार करते हैं। अब कहते हैं कि अब यहां पर दूसरी बात कहते हैं कि अपने यहां पर एक हम लोग किस लिए यहां पर बैठे हैं, तो कहते हैं कि हम जहां पर बैठे हैं इसका कुछ कारण है। तो पहले जैसे साधन चतुष्टय है वैसे अनुबंध चतुष्टय होता है। जब हम लोग शास्त्र का श्रवण करते हैं तो दो बातें, देखिए थोड़ी बातें अलग हो सकती है, सुनने में कोई हर्ष तो है ही नहीं, हम लोग सुन तो सकते हैं ना। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? अनुबंध चतुष्टय में हम लोग अगर सुने कि अनुबंध होता क्या है, बोलते हैं कि जब हम लोग श्रवण करने आते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है। आप यहां पर आए हैं भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं, ट्रस्टी आए हैं उनको आना ही था, श्रोता आने हैं उनको तो प्रतिवर्ष आना ही है, विशेष रूप से इस समय कुछ यजमान आए हैं तो यजमान को आना ही है प्रतिदिन यहां पर पूजा करने के लिए, हमारे ब्राह्मण वर्ग कितने दूर से यहां पर बटुक आए हुए हैं उनको आना है पाठ करने के लिए, और ये आयोजन हो रहा है, ये प्रयोजन है, वार्षिक होना है इसलिए होना वो तो होना ही है, इसका कोई ना कोई निश्चित प्रयोजन है। अनुबंध चतुष्टय में एक होता है कि इसका प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन है यहां का जो वार्षिक उत्सव है, और वार्षिक उत्सव के साथ साथ में हम लोग के 7 दिन यहां पर कथा श्रवण करने वाले हैं, और कथा में हम लोग भगवान का स्वरूप का चिंतन करने वाले हैं, भगवान के विषय में जानने वाले हैं, ये इस कथा का प्रयोजन है। बोले सिंह विषय क्या है? एक होता है कि जब तक हम लोग विषय को न जाने तब तक हम लोग कोई बात को करते नहीं है, हमको विषय जानना आवश्यक होता है। आप जब तक आपके मन की बात न हो आप वहां पर जाएंगे नहीं, आप जाते हैं जब तो आपको अनेक अनेक पुस्तकें दिखती हैं, तो सब खरीद लेते हैं क्या? नहीं, जो अपने को ठीक लगती है, जो अपने को ठीक लगती है, ये शेयर बाजार वाले बैठे हैं वहां तो कितने प्रकार के शेयर है, लेकिन जो उनको ठीक लगेगा कि ये शेयर की कीमत बढ़ सकती है वही वो उठाएंगे, उसी पर बोली लगाएंगे। उसका विषय निश्चित होना चाहिए, और विषय के साथ साथ में कहते हैं कि यहां पर हमारा विषय भी हो गया, हमने समझ लिया कि हमें भागवत श्रवण करनी है, तो इसका साथ साथ में उसका अधिकारी होना चाहिए। जो 4 बात है, एक अधिकारी होना चाहिए, तो अधिकारी हो तो उसमें 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होता है जो श्रेष्ठ अधिकारी, एक होता है मध्यम अधिकारी, एक होता है सामान्य अधिकारी, कनिष्ठ नहीं सामान्य अधिकारी। हम लोग सब सामान्य अधिकारी में हैं, ना मैं सुखदेव हूं ना आप लोग परीक्षित हैं, हम लोग सामान्य हैं, हम लोगों का वो स्तर है ही नहीं, हम लोग उच्चाधिकारी हो भी नहीं सकते हैं। 3 घंटे में क्या करेंगे हम, 3 घंटे के बाद में फिर वहीं जाना है, हम लोग सामान्य अधिकारी हैं। और इसका संबंध किससे है? ये हुआ कि प्रयोजन, इसका विषय, अधिकारी और संबंध, 4 वस्तुएं हैं। हमारा संबंध है धर्म से, हमारा संबंध है परमात्मा से, हमारा संबंध है अपने आप से। हम ये दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपने अपने किसी इतर के, किसी अपने पूर्वज के निमित्त में अगर पोथी भी रखी होगी तो उसको कितना लाभ होगा, आपको संतोष होगा कि हमने उनके निमित्त में ये सत्कार्य किया, हमारे से सीधे सीधे से संबंध है। ये हमारा संबंध किससे? धर्म से संबंध है। और साथ साथ में धर्म में क्या आता है? पहला आएगा ज्ञान, भक्ति और कर्म, इसमें अनेक प्रकार के संबंध है। इस प्रकार का द्वितीय जो यहां पर मंत्र है ये कहा कि धर्म प्रोजित के तोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। यहां पर मंगलाचरण में कहते हैं कि जो यहां पर जो धर्म है, धर्म प्रोजित केतो, केतो रहित धर्मों को हम लोग यहां पर श्रवण करने जा रहे हैं। केतो का मतलब होता है कपट, एक होता है कपट वाला धर्म और एक होता है निष्कपट धर्म। केतव, इसको कपट को कहते हैं केतव। हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं वो कौन से धर्म का आश्रय लेकर के बैठे हैं? निष्कपट, कोई किसी का कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमात्मा के विषय में हम लोग जानने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निष्कपट धर्म को हम लोग यहां पर जानने के लिए बैठे हैं। धर्म प्रोजित केतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो धर्म है वो किसका है? वो संतों का धर्म है जो निर्मत्सर है, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, ऐसे लोगों का धर्म है। हम लोग जहां पर बैठे हुए पालन कर रहे हैं। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहां पर जो वेद्य विषय है, वेद्य का मतलब जानने के ला, जानने वाला विषय, और जब आप उस परमात्मा को जान लेते हैं, वेद्यम वास्तव, जो वास्तव तत्व है, मत्र वस्तु शिवदम, जो कल्याणकारी विषय है, कल्याणकारी जो परमात्मा है, उसको जब आप लोग श्रवण कर लेते हैं तो उस समय तापत्रयोन्मूलनम। यहां पर कहते हैं कि वो तापत्रय तीनों तापों को मुक्त करने वाला होता है। ऐसा श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, ऐसे तापत्रय को समाप्त करने के लिए ये जो श्रीमद्भागवत की रचना महामुनि ने की हुई है, वेदव्यास जी ने। किम वा परेरीश्वर, इसकी और उससे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सद्यो रिद्ध वरुद्धते, जैसे आप लोगों ने श्रवण किया उसी समय वो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। जब आप लोग भगवान की लीला श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, आप राम भगवान जब जा रहे हैं वन में और सब संतों से मिल रहे हैं, सब ऋषि मिल रहे हैं, और वहां पर वन में जाकर के जगह जगह मिल रहे हैं, तो आपके मन में तुरंत उस भगवान राम का चित्र आ जाता है, आ जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, उस समय आपके सामने किसका चित्र आता है? भगवान कृष्ण का और अर्जुन का वहां पर चित्र आता है। सद्यो रद्ध, जैसे ही आपने श्रवण कर लिया उसी समय आपके सामने परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए आपको यहां पर बताया गया है, शुश्रूष तत्सनात्, जैसे आपने श्रवण कर लिया उसी क्षण में उस परमात्मा का स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है। इस प्रकार का श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए आज आप बैठे हैं, कल तो इसकी महिमा आप लोगों ने सुनी थी। ये श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। बहुत से लोग समझने वाले भी होंगे, कुछ लोग थोड़ा समझने वाले होंगे, कुछ लोगों को मजबूरी में सुनना पड़ता होगा, लेकिन ये सुनेंगे तो अपने आप आपके भीतर बैठे हुए पाप यहां से सुमंतर हो जाएंगे, और जिनके लिए कर रहे हैं उनके तो होने होने हैं, हालांकि वो सब पुण्यात्माएं रही होगी, तभी तो उनके निमित्त यहां पर आप श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए यहां पर बैठे हैं, जो आपके साक्षात वो परमात्मा आपके हृदय में होकर के आपको अनुभूत करने वाला है। दो वस्तु हुई, किस विषय में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, श्रवण करने का फल कौन क्या हो सकता है, कौन आपको श्रवण करा सकता है, क्या श्रवण आप करते हैं, ये दो बातें आपने श्रवण की। और अब पहले तो आपको आमंत्रण आया था, ये प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से बड़ा सुंदर कार्ड छपा था, उसमें सबके फोटो थे, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कहने वाला है, किस निमित्त में कहने वाले हैं, ये सब आपको आमंत्रण मिला था। किसकी तरफ से? आश्रम की तरफ से। परंतु अब आपको आमंत्रण दे रहे हैं भगवान वेदव्यास जी, उनकी तरफ से है। अब ये लौकिक नहीं है, परलौकिक आमंत्रण है। कौन सा आमंत्रण है? बोलते हैं कि अब यहां पर आमंत्रण, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाग्रम द्वय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूय भावता। अभी आमंत्रण है आपको, दस मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, ज्यादा ज्यादा ढाई घंटा, लेकिन उन्होंने तो सदा के लिए आमंत्रण दिया हुआ है कि हम लोगों की तरफ से कोई बोलते हैं कि मुझे कोई दूसरा काम है, आप जा सकते हैं, आपको आधे घंटे के लिए आमंत्रण, किसी के लिए एक घंटे का आमंत्रण, किसी के दो घंटे का आमंत्रण, और किसी को और मेरे लिए पौने तीन घंटे का आमंत्रण। यहां पर दस मिनट पहले आना, दस मिनट पहले जाना, वो पौने तीन घंटे हो जाता है। तो हम सबके लिए एक आमंत्रण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी ये वृक्ष का ये फल है। एक आगम होता है और एक निगम होता है। आगम होता है जिसको कहते हैं कि वो आगम का मतलब होता है, एक आपके अपने शास्त्र हैं, नियम सिद्धांत बनते हैं, और एक होता है निगम जो शास्त्र होता है। निगम कल्प शास्त्र के सम्मत ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। और वो तो कैसे है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल है। और कैसे है, गलित का मतलब ये है कि परिपक्व फल है, ऐसा नहीं है ये खट्टा मीठा नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट फल है। गलित का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ, जिसको दांत है वो भी खा सकता है, और जिसको दांत नहीं है वो भी खा सकता है, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। बहुत खाने में उसको पचाने में बड़ा आसान। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रय संयुतम, चूंकि इसमें सुखदेव जी महाराज जी का इसमें उनके द्वारा ये रचित हैं। और ऐसा भी जो सुख होता है ना, सुख जिसको तोता बोलते हम लोग, जो पोपट होता है, वो उसी फल को चोंच मारता है जो परिपक्व है, जो पका हुआ है। तो यहां पर दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं, सुख मुखादमृत द्रय संयुतम, वो सुखदेव जी महाराज जी द्वारा कहा हुआ है, मोह रहो रसिका भुवि भाव कहा। अब श्रोतागण उसमें कहते हैं कि रसिक भी हो और भाविक भी हो। श्रोता कैसा होना चाहिए, जैसी जैसी कथा आए उसका रस लेने वाला होना चाहिए। और ऐसा जो ये आपको आमंत्रण भगवान वेद व्यास जी की तरफ से आया है, तो बार बार इसको हम लोग पीते हैं, बार बार यहां पर कथा श्रवण होती है, बार बार श्रवण कराते हैं, आप लोग सुनते हैं, और बार बार उसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, धीरे 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 उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। और एक ना एक दिन वो जो परम सत्य हैं, झूठ भी कहते हैं ना कभी कभी, झूठ भी होता है, कई बार बोलो तो सत्य सा लगता है, सत्य होता नहीं है। हम लोग एक कथा कही सुने थे, एक पंडित जी कहीं गए थे यजमानी में, और यजमानी में पंडित जी गए, उनको यजमान के पास कुछ नहीं होगा दक्षिणा देने के लिए, तो एक बकरी दे दी उनको। तो पंडित जी ने चलो गए कि बकरी तो बकरी, चलो कोई बात नहीं, पहले का जमाना, आजकल तो वो नोट भी बंद हो गया, तो चेक, आजकल जो ब्राह्मण जाते हैं ना तो कुछ चेक देते हैं। तो एक ब्राह्मण को कहा कि, ब्राह्मण ने कहा कि यजमान, जो वो नोट में जो लेने में जो और वो जो आपको आशीर्वाद देने में जो आनंद आता है ना, ये चेक से सब नहीं हो पाता। तो पहले का समय था, एक किसी ब्राह्मण को किसी यजमान ने बकरी दे दी और वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। जाते जाते चले तो वहां पर कुछ दुष्टों की नजर पड़ी, कुछ चोर थे ना उचक के, उनको उनकी दृष्टि पड़ी कि ब्राह्मण के घर में बकरी का क्या काम, ये तो हम लोगों के लिए काम की बात है। उन्होंने कहा, एक दो तीन थे उसमें, तो पहले ने कहा कि हे पंडित जी, आप ये कुत्ते के बच्चों को कहां ले जा रहे हैं। कहा कि नहीं, कुत्ते का बच्चा नहीं तो बकरी का बच्चा है, बकरी है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो चला गया। फिर दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, ये आप क्या, आपके लिए कोई योग्य नहीं, आप ये कुत्ते के बच्चे को ले जा रहे हैं। भले नहीं, कुत्ते का बच्चा नहीं है तो बकरी का बच्चा है, बकरा है, भले नहीं। तो वो भी चला गया। तीसरा आया, उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े पवित्र आत्मा हैं, आप इस बकरे का क्या काम वहां पर। तो उनको संदेह हुआ कि हो सकता है ये बकरी न होकर के कुत्ते का बच्चा, उन्होंने वहां पर छोड़ करके चल दिए। तो कभी कभी जो असत्य है वो भी सत्य सा प्रतीत होता है, परंतु हम लोग यहां पर सत्य की परिभाषा कर रहे हैं। सत्य को हम लोग जीवन में सुनते 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 सत्य हमको सत्य सा प्रतीत तो होगा कम से कम, और है ही। इसलिए यहां पर भगवान वेदव्यास जी ने उसका रहस्य बताया, किस विषय में आप कहने वाले हैं, क्या श्रवण करने वाले हैं, और श्रवण किस लिए श्रवण करना है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर यहां पर वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। अब थोड़ा सा कठिन विषय है, तो एक आध थोड़ा सा भजन बढ़िया सुंदर हो जाए हमारे विमल भाई, थोड़ा भजन एक आप लोगों को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, क्योंकि फिर आगे आपको फिर और सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करनी है।
गुरु जी दर्श बिनु जिय रहो रा करते, गुरु जी दर्श बिनु जिय रहो रा करते, गुरु जी मेरे नैनन में जल भर दे, गुरु जी मेरे नैनन में जल भर दे। पापन अवगुण की राती कैसे करे गुरु निज की दासी, मैं पापन अवगुण की राती कैसे करे गुरु निज की दासी, माया कपट है तो वे दर्द बिन हो, गुरु जी दर्श बिन जिय रहो रा करते, गुरु जी मेरे नैनन में जल भरते। चरण पड़ी मैं आई तिहारी, माफ करो गुरु भूल हमारी, चरण पड़ी मैं आई तिहारी, माफ करो गुरु भूल हमारी, हाथ ग्रहो तुम अपने करते, तुझे दर्श बिन जियना मोरा करते गुरु जी मेरे पालक पालन मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा तुम बिन पालक पालन मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा विनती करते हो मैं तो जिगर पे गुरु जी मेरे नैनन में जल भरते गुरु जी दर्श बिन जियना मोरा करते गुरु जी जल भर से गुरु जी जल दिन जिए
भागवत की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक तो मंगलाचरण था, महात्म्य था, जिनके विषय में श्रवण करना था उनके विषय में ये कहा जा रहा था कि आप क्या श्रवण करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया शोनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समासत। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं कि नैमिष्य क्षेत्र में, नैमिष्य का मतलब होता है कि जहां काल की गति रुक जाती है। नैमिष का अर्थ होता है जहां पर काल की गति रुक जाती हो, वहां पर बैठ करके उस अकाल पुरुष का श्रवण करने से हम भी उसी समान हो जाते हैं। इसलिए वो क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। निमिषारण्य में ही क्यों कथा होती है? उसका कारण है कि वहां पर निमिष का मतलब है कि काल की वहां पर कुछ चलती नहीं है, काल वहां पर अवरुद्ध हो जाता है, वहां पर स्तंभित हो जाता है। तो वहां पर अनेक ऋषि 1000 वर्ष का अनुष्ठान लेकर के वहां पर बैठे हुए हैं। हमारे यहां पर कहा गया है कि 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और वो नित्य यज्ञ कर रहे हैं। परंतु यज्ञ करते करते भी थोड़ा सा समय मिल जाता है। उन्होंने विचार किया कि एक दिन की बात है, वहां पर सुखदेव जी आए और यज्ञ की समाप्ति के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में, सायंकालीन सत्र की समाप्ति के बाद में उन्होंने देखा कि सूत जी महाराज आए हैं और सूत जी महाराज जी को प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक जी ने प्रश्न किया, ये सूत जी त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानक, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, आप हमें कुछ सुनाइए, कुछ कथा श्रवण कराइए। और कैसी? बोलते हैं कि उस परमात्मा की कथा श्रवण कराइए, जो परमात्मा, जो भगवान, उनकी अनेक अनेक दिव्य कथाएं हैं। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भागशः, उनकी सुंदर सुंदर जो दिव्य कथाएं हैं, हम लोगों को विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। और यहां पर छह प्रकार का प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत ये है कि श्रीमद् भागवत संबंधी कथा, जो भगवत संबंधी जहां पर लीलाओं की कथाओं का जो वर्णन होता है वो श्रीमद् भागवत। आप लोगों को बड़ा सुंदर कल मोहनानंद जी ने की भागवत की व्याख्या बताई, परंतु जो परमात्मा के विषय में, परमात्मा के गुणों के विषय में जो आप लोग श्रवण करते हैं उसकी कथा यहां पर श्रवण करने जा रहे हैं। वो जो परमात्मा जो है उसका जो स्वरूप क्या है, कहते हैं कि वो जो परमात्मा, हम भगवान किसको कहते हैं? हमारे यहां पर लोग बोलते हैं हमारे यहां पर बहुत भगवान है, किसका किसका नाम ले, हम लोगों को कुछ संदेह होता है। संदेह करना नहीं भगवान के विषय में, जो आपको जितना आप श्रवण करते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही पर्याप्त है। पहले भी मैंने कहा कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, वो आपको पूरे दिन बिठा के रखने का उसका कोई तात्पर्य नहीं है, परंतु उस परमात्मा के विषय में हमको श्रवण करना चाहिए। वो परमात्मा भगवान है क्या? हम जिसको भगवान बोलते हैं तो विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य क्षणनाम भगवान मिति। भगवान का वास्तविक जो व्याख्या की गई है तो भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न जो हो वो भगवान। दुनिया में कौन सा ऐश्वर्य है? दुनिया में तो बहुत से ऐश्वर्य है, हमारे पास में छोटा होता है तो अभिमान कर लेते हैं। हमारे यहां पर एक सुंदर से हीरा था, वो कहां गया? और हम लोग जब जाते हैं तो देखने का पैसा लेते हैं अरवासल लोग, बहुत लोगों ने देखा होगा, हमने तो अभी तक नहीं देखा उसको। अब पैसा देकर के हमारी वस्तु क्यों देखे हम? तो जिसके पास छोटा सा ऐश्वर्य होता है तब भी वो अभिमान करता है, करता है कि नहीं करता है? अभी हर साल हमारे यहां पर एक लिस्ट छपती है, फोर्ब्स कोई 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 कंपनी है, तो वो लिस्ट फोर्ब्स जो भी हो वो लिस्ट छापता है, और उसकी जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसे वाला होता है उसका नाम ऊपर आता है, तो हर साल रहता होगा उसका नाम, हर साल वही नाम रहता है। तो जब दूसरे नंबर पर आता होगा उसको अच्छा लगता होगा क्या? नहीं ना, वो उसके बाद भी दूसरे पास भी जो पैसे होंगे वो भी तो ऐश्वर्य संपन्न होंगे ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य है और वो अभिमान करते हैं, परंतु जिसका जगत का संपूर्ण जिसका ऐश्वर्य जिसके पास में हो वो कभी अभिमान करता है क्या? वही परमात्मा है, वही भगवान है जो हमें सब कुछ देता है, परंतु कभी नहीं कहता है कि इसका तुम कुछ मूल्य चुकाओगे हमें, जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य जगत में, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जल बनाया, वायु बनाई, अग्नि बनाई, ऐसा जो संपूर्ण ऐश्वर्य वाला, और उस धरती के भीतर हीरा कहां निकलता है? कोयले में मिलता हो कि कहीं कहीं मिलता हो, परंतु इस भूमि में मिलने वाला जो हीरा है वो भूमि है किसकी? अभी 70 साल पहले जो यहां से बहुत से लोग होंगे जिसका जिनका कराची से संबंध होगा, वो भूमि 70-71 साल पहले हमारी थी कि नहीं थी? उससे पहले जाएंगे तो उसके आगे जो अफगानिस्तान है वो हमारी थी कि नहीं थी? इधर हम ढाका जाते हैं वो थी कि नहीं थी? अब है क्या? उसका विभाजन हो गया, दूसरे चले गए, परंतु है किसकी? वो एक ही परमात्मा की है। उसमें निकलने वाले जो भी धातु हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जवाहरात हो, मोती हो, वो है किसके? वो किसके हैं? वो परमात्मा के हैं। जब हमारे पास आते हैं तो हमारे हम उसको अपना अभिमान करते हैं कि हमारा है, हमने इसको पैसे दे के ले लिया है, बोलते हैं ना हम लोग, पैसा दे करके हमने खरीद लिया है, इसका हम अपना अभिमानी होते हैं। परंतु वास्तविक वस्तु किसकी है? वही भगवान की, जो समग्र ऐश्वर्य का जो मालिक हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय, और साथ साथ में धर्मवान हो, जिसके साथ में धर्म होता है ना, वो व्यक्ति अभिमान नहीं करता है। धर्म के अनेक अनेक उसके कहे गए हैं गुण, धृति क्षमा दया नमस्कोयम, ऐसे 9 लक्षण कहे गए हैं और भी 39 लक्षण कहे गए, अनेक अनेक लक्षण हैं। परंतु जिसके धर्म हो, साक्षात धर्म का स्वरूप हो, वो परमात्मा धर्म का स्वरूप है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म यशः। हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है तो हमको लगता है कि हमको आजकल लो एक राष्ट्रपति वहां पर दिल्ली से मिलने लगे हैं, कुछ पद्म पुरस्कार ना, अनेक पद्म पुरस्कार बोलते हैं, उसके कई एक होते हैं। और समस्या तो ये होती है कि जो भारत रत्न जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिलता नहीं है, और जिसको नहीं मिलता है वो 24 घंटे में दे देते, मिल जाता है किसी किसी को, प्रारब्ध की बात है। अब वो छोटा सा सम्मान मिलने पर भी हम कितने अपने आप को बड़े महसूस करते हैं कि हमको तो पद्म पुरस्कार मिला है, हम पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, और पता नहीं और क्या क्या है। और वो लोग तो सामने आते ही नहीं है जिनको भारत रत्न मिलता है, या तो ऊपर गए होते हैं या तो दुनिया से थोड़े अलग होते हैं, वो तो मिलते नहीं है। जब उनको छोटा सा पुरस्कार मिलता है तब भी वो फूले नहीं समाते हैं। और जिसको समग्र यश जिसका हो, वो तो किसके पास में समग्र यश? भगवान के पास। यशः श्रिय, और श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है ना। जब हमारे पास आती है तो हम क्या बोलते हैं? अकाउंट में पैसा कोना छे? अरे यहां तो ठीक है, यहां तो थोड़ा सा हमारे यहां पर संयुक्त परिवार होता है, तो हमें पाश्चात्य देशों में तो वहां पर पत्नी बोलते हैं कि सुबह का मैंने लाया है, शाम को तुम ले आना, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस भर दिया, तुम घर का इंश्योरेंस भर लेना, मैंने लोन चुका दिया है घर का, तुम गाड़ी का चुका देना। वहां तो वो अपना समझते हैं, लेकिन अपना है क्या? कहते हैं कि दुनिया में ये जो लक्ष्मी है वो किसकी है? नारायण की है। और जिसके पास वो लक्ष्मी, जो शुभ लक्ष्मी होती है, जो हाथी पर बैठकर के आते, जो कमल की जो जिसका आसन होता है, तो वो लक्ष्मी जब अपने पास आती है तो भगवान के पास ले जाती है। जो उल्लू पर बैठ के आती हो तो कहां ले जाती है? तो जहां उल्लू बैठता हो, जहां उसको दिखता ना हो। लेकिन अधिकांश उल्लू वाली ही वो लक्ष्मी आजकल देखने में आती है। अगर वो गज लक्ष्मी होती, शुभ लक्ष्मी होती, तो पता नहीं ये कल जो मंदिर में जिसमें हम आए जा करके, उसका वधो और बढ़ता ना, बढ़िया सुंदर मंदिर होते हैं। इस देश में कोई दुखी न होता। जितनी लक्ष्मी हमारे यहां पर है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। कितनी बार लूटा गया, और आज फिर जैसे होते हैं कि जो सरोवर होता है ना, कितना जल वहां से निकल जाए पुनः उसमें आ जाता है। जैसे कोई कुआं होता है ना, कुएं का जल कितना आप निकालो, हमारा भारतवर्ष तो खदान है, ये सोने की चिड़िया है, यहां कोई कमी नहीं है। कमी है तो थोड़ी सी कमी है, विचारों की कमी है। जो हमारे पास में है वो मेरा अकेले का नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका रक्षक केवल हूं, मैं उसका ट्रस्टी हूं। अगर ये कोई समझे, और वो जो लक्ष्मी है वो समग्र लक्ष्मी श्रिया वो भगवान की है, इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। और साथ साथ में कहते ज्ञान वैराग्यस्य और ज्ञान और वैराग्य हो। अगर आपको संसार में वैराग्य हो तो इन वस्तुओं को कभी आप अपना मानेंगे नहीं। एक संत के पास कोई गया कि महाराज आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। उसने कहा कि देखो तुम किसको बड़ा मान रहे हो, अगर मेरे पास ये वैभव नहीं होता तो तुम मेरे को पूछने भी नहीं आते। तो मुझे पूछने नहीं आए हो, जो मेरे पास में है उसको पूछने आए हो। वो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आपके पास भी कोई आता है तो आपके पास में आने वाला व्यक्ति आपको बड़े आपको दंडवत करता है, बड़ी आपकी प्रशंसा करता है, वो आपकी प्रशंसा नहीं करता है, आपके पास जो वस्तु है उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए है किसकी वस्तु, वो उस परमात्मा की वस्तु है। इसलिए जो परमात्मा अगर हमारे में अगर वो ज्ञान आ जाए तो हम भी समझने लग जाएंगे, परंतु हमें वो ज्ञान होता नहीं है। परंतु भगवान परमात्मा के पास में ज्ञान और वैराग्य दोनों है। ज्ञान क्या है, सद वस्तु है उसका ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य क्या है, सद और असद का उसका विश्लेषण होना चाहिए कि दुनिया में सत्य वस्तु है क्या। इसलिए परमात्मा के पास वो ज्ञान और वैराग्य है। इसलिए षण्णाम भगवान इति, जिनके अंदर ये छह गुण है वो कोई भी भगवान हो सकता है। भगवान होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री बनने में अपने देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। आजकल हो रहा है ना, लोग बोल रहे हैं कि वो उनकी अपनी भाषा है। अपने देश में नरेंद्र मोदी कभी चाय बेची नहीं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो पढ़ते थे उनके पास में नौका का पैसा नहीं होता था, वो तैर करके वो वाराणसी जाते थे पढ़ने के लिए। तो इस देश में ऐसा हो सकता है, तो भगवान कोई भी हो सकता है, परंतु उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। कितने, ये छह गुण होने चाहिए। ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐश्वर्य होने पर भी उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। आपका धर्म होना चाहिए, धर्मवान होने पर भी मैं धार्मिक हूं उसका अनुभव अभिमान नहीं होना चाहिए। आपके पास में कितना भी वैभव हो, संपत्ति हो, संपत्ति होने पर भी ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये परमात्मा की है। आप लोगों ने पद्मनाभ मंदिर का नाम सुना, सुना? वहां पर 1,00,000 करोड़ की संपत्ति है। संयोग से एक बार मुझे जाने का अवसर मिला था। उस राजा ने, वहां एक राजा है वर्मा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और वहां पर आमंत्रण जब दिया तो उनका अतिथि बनकर जब मैं गया, एक बड़ा भारी महल था, उस महल में मुझे ठहराया गया। रात को देखा कि मेरे सिवाय वहां पर कोई है ही नहीं, बड़ा भारी महल और वहां पर एक पेंटिंग लगी थी। तो मैंने पूछा ये पेंटिंग किसकी है, उन्होंने कहा कि रवि वर्मा नाम के बहुत बड़े पेंटर थे और इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपया होगी, और ऐसी कम से कम उस महल में 100 ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। उस महल में मुझे ठहराया था और मैं अकेला था। मैंने सोचा कि आज मैं इस महल का राजा मुझे पता था कि कल मुझे यहां से जाना है। फिर दूसरे दिन प्रातः काल हम गए, उन्होंने कहा कि ये हमारे विशेष अतिथि हैं, जैसे मेरे साथ में यहां पर, जैसे मेरे लिए यहां पर सुविधाएं होती है, इसी प्रकार स्वामी जी को सुविधा दी जाए। तो प्रातः काल दूसरे दिन उनकी रोल्स रॉयस आई, उसके अंदर कहा कि आपको दर्शन करने चलना है। चारों दरवाजे बंद हो गए और उसके बाद में वहां पर मुझे दर्शन कराने के लिए, पद्मनाभ मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां पर 3 द्वार हैं। एक द्वार में भगवान मुखाकृति का दर्शन होता है, एक में नाभि का दर्शन होता है, एक में चरण का दर्शन होता है। ऐसे भगवान का दर्शन किया और मैंने पूछा उस समय कि जो वो थोड़ा इशारा मैंने किया, वो जो संपत्ति है 1,00,000 करोड़ की, वो कहा कि वो यहां पर नीचे। मैंने बाद में पूछा कि इतनी संपत्ति कैसे हुई, कहीं कुछ दूसरा जा रहा हूं मैं, इतनी संपत्ति यहां पर कैसे हुई। वहां पर कहा गया है कि यहां का राजा अपने आप को राजा नहीं मानता है, यहां का राजा अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। जितनी उसके पास में संपत्ति आती है वो राजा भगवान को अर्पण करता है, इसलिए भगवान के पास में वो संपत्ति राजा की होते हुए भी राजा अपनी संपत्ति नहीं मानता है और इसलिए भगवान के पास आती है, इसलिए यहां पर संपत्ति एकत्रित दिखती है। अगर ऐसे ही दूसरे राजा करते तो पता नहीं इस देश का ना सोना बाहर जाता ना इस देश के सोने को गिरवी रखना पड़ता, हमारे जो ये सोने की चिड़िया है ये सोने का मयूर हो जाता। तो इस प्रकार का जिसके पास में इस संपत्ति, ये संपूर्ण जगत ये मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है, जैसे वो त्रिवेंद्रम के राजा मानते हैं वैसे अगर सब लोग हम लोग मानने लग जाए वो परमात्मा ही परमात्मा की संपत्ति है तो हमको भगवान बनने में जरा भी कोई शंका नहीं है। इसलिए भगवान कोई भी बन सकता है हमारे यहाँ पर, जैसे प्रधानमंत्री कोई बन सकता है वैसे भगवान कोई भी बन सकता है, परंतु वो गुण आपके भीतर आने चाहिए। अब वो कब आते हैं? जब धीरे धीरे उनके गुणों का वर्णन सुनो, उनके विषय में श्रवण करो तो अपने को वैसा बनने का कभी मन करता है कि नहीं करता है? अपने को भी लगता है कि हम भी बड़े आदमी बन जाए? तो एक जब चुनाव होता है सीटें होती है थोड़ी सी, एटलीस्ट 188 ना गुजरात की,
100
और उसमें उम्मीदवार कितने ही आए हैं, वहां पर हजारों लोगों ने कहा कि मैं चुनाव लड़ू मैं चुनाव लड़ू, और जो जिसको टिकट नहीं मिला फिर बाद में पड़ा पड़ी। हम जब सब चाहते हैं परंतु योग्यता होनी चाहिए, हम जब योग्य बनेंगे, जब हमारे भीतर जब धर्म आएगा, हमारे भीतर जब ज्ञान आएगा वैराग्य आएगा तब जाकर के हम उसके समान बन सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा के ये 6 गुण, और वो जो परमात्मा है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल उसके पास वैभव है, वो क्या करता है, कहते हैं कि उस परमात्मा की उत्पत्तिम प्रलयम चैव, उत्पत्ति प्रलय भूतानाम गतिम आगतिम, उत्पत्ति प्रलय चैव, और भूतानाम मतलब हम लोग कहां से आए और कहां जाना हमें पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं कि हम कहां से आए हैं, पता है किसी को? कुछ संत साधक उनको अपने कुछ जन्मों का पता होता है, जिनका अंतकरण निर्मल होता है उनको कम से कम 3 जन्मों का पता होता है, मैं उससे पहले कहा था उससे पहले कहा था और कहां जाना है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम आगतिम, बोलते हैं कि जो तीनों चीजें उस परमात्मा को आती है जानता है, हमारे विषय में वो परमात्मा जानता है, हम शायद जानते हो न जानते हो। आपको कोई पूछे आप जब 6 महीने के थे तो आपको क्या अनुभव होता था, किसी को पता है? 1 साल के थे तब, आप जब 5-6 साल के हो जाते तो थोड़ा थोड़ा आपको पता लगता है कि मैं कहां हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मुझे क्या करना है। परंतु उस परमात्मा को हमारे विषय में सब कुछ पता है, ऐसे परमात्मा के विषय में हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया किनको? सूत जी महाराज को, और वही बात हम लोग यहां पर श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं कि हम लोगों को एक बात आप बताएं कि द्रोही योगेश्वरे कृष्ण, हे भगवान आप ये बताएं, ब्रह्मणे धर्म सरोणी, कहते हैं कि भगवान आप हमें ये सुनाइए कि जब भगवान जब इस लोक से जब चले गए तो धर्म ने आश्रय किसका ग्रहण किया, क्योंकि धर्म किसी का आश्रय ग्रहण करता है वो परमात्मा का, तो धर्म ने जिसका आश्रय ग्रहण किया ये हम श्रवण करना चाहते हैं। तो सूर्य आप ये पुनः यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा पुत्रे तन्मयतया तरोभिः तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानदोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नम चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुनः सूत जी ने भगवान नारायण को नमस्कार किया, नर को नमस्कार किया। नर और नारायण वर्तमान के ये साक्षात देवता है और उन्हीं का दर्शन करने के लिए हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ जब हम लोग जाते हैं और नर और नारायण का दर्शन करने जाते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, जो नरोत्तम है हमारे में श्रेष्ठ है। देवीं सरस्वतीं व्यासं, भगवती देवी के बिना हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। वाणी की जो अधिष्ठाती देवी थी भगवती है, शारदा है। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये, तो उनका हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार ये प्रश्न करने के बाद आप लोग मुनियों, आप लोगों ने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। और वो जो परमात्मा है, कहते हैं कि वो जो परमात्मा वदन्ति तत्तत्वविद, जो तत्वविद हैं उनके अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। कोई क्या कहता है, ब्रह्मेति परमात्मेति, कोई उनको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, और कोई भगवान इति शब्दते, बोलते हैं कि उनको भगवान कहता है। केवल कहने का जो भाव है, कहने के शब्द अलग अलग है। कोई वेदांत वाले ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। एक ही स्वरूप है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा का हम लोग सब जब श्रवण करते हैं, तो उस समय जब हम भगवान का श्रवण करते हैं तो हमारे भीतर कई गांठें पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि उस परमात्मा का श्रवण करने के बाद जो भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये उपनिषदों में भी आया है, चिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनेश्वरो, वो जो परमात्मा है उसका जो हम स्मरण करते हैं, उसका जो ध्यान करते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, बहुत दिनों से, बहुत काल से, जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय में एक गांठ पड़ी हुई है। कौन सी गांठ है? मेरे और तेरे की, और कुछ नहीं है। ये मेरा है और ये तेरा है, तेरा भी मेरा हो जाए, मेरा तो मेरा है ही। दुनिया में यही चल रहा है, तुम्हारा भी मेरा हो जाए, ये नियम है। चिद्यन्ते सर्व संशयः, उस परमात्मा को जान लेने के बाद में जो हमारी ये जो संपूर्ण संशय समाप्त हो जाते हैं। दुनिया में संशय तो है, हम उससे बंधे हुए हैं। संशय आत्मा विनश्यति कहा गया कि संशय जिसको होता है वो विनाश होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, बड़ी बड़ी बातें यहां पर लिखी है। उस परमात्मा का ध्यान करने से, उसका अपने को ठीक ठीक ज्ञान होने से हमारे संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। और दृष्टैवात्मनेश्वरे, बोलते हैं कि उनका दृष्टिपात होने से, और वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, तो यहां पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का यहां पर गुणगान होने वाला है। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा। कहते हैं कि उनको हम लोग वासुदेव कहते हैं, वो जो भगवान है। ब्रह्मेति, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसको हम लोग यहां पर सीधी सीधी भाषा में वासुदेव परम ज्ञान, वो ज्ञान जो है वासुदेव के लिए, वासुदेव संपूर्ण ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, जो तप किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, वो वासुदेव के लिए किया जाता है। वासुदेव की बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान शिव ने की है, आगे बताएंगे। वासुदेव किसको कहते हैं? वासुदेव परो धर्मो, संपूर्ण धर्म वासुदेव के लिए है। वासुदेव परम परागति, संपूर्ण जो हम लोग कर्म करते हैं वो वासुदेव में ही उसकी गति होती है। ऐसे वासुदेव,
ये पहले तो बताया कि जो जन्म उत्पत्ति प्रलय और संहार जिसकी अधिष्ठाता है वो अव्यक्त है, अव्यय है, निर्गुण है, निराकार है। वो जो परमात्मा है कैसा है? अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, परंतु साकार दिख रहा है ना। या हम लोग स्थापन करते हैं तो हम लोग यहां पर जो मूर्ति दिखती है उसको हम लोग देखते कि नहीं देखते हैं? वो साकार हुआ कैसे? जो साकार हुआ कहते हैं जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महादधाभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शशिश्चया। वो जो परमात्मा है वो षोडश कला युक्त है। सुनने में कोई हर्ज नहीं है। वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो 16 कला युक्त है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया और एक मन, ऐसे अपने यहां पर उसको 16 कलायुक्त परमात्मा कहा जाता है। उसने स्वरूप ग्रहण किया। उस परमात्मा ने जो अव्यक्त था, जो निर्विकारी था, जो अव्यय था, जो अव्यक्त था, उस परमात्मा ने आश्रय लिया अपने ही योग माया का। 5 कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और पंच प्राण, पंच महाभूत और एक मन परमात्मा का है। ये तो हम लोगों में बीच में है। जो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है उसके 17 तत्व हैं, परंतु यहां पर परमात्मा ने ये 16 तत्वों से लेकर के अपने आप को उन्होंने प्रकट किया और फिर वो वहां पर एक सागर में लेटे हुए हैं और वहां पर एक कमल का पुष्प वहां पर प्रकट होता है और उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है, ये बहुत देर तक चलने वाला है ये क्रम। हम लोग क्योंकि ये भी सुनने वाले हैं, ये अपनी कथा है कि हम कहां से प्रकट हुए और उन्होंने फिर अनेक अनेक अवतार ग्रहण किए। वही परमात्मा ने जो भगवान नारायण जिनको कहते हैं उन्होंने अनेक अवतार ग्रहण किए और उस पहले अवतार में यहां पर कहा कि जो संतों का अवतार हुआ है, सबसे पहले सनकादि ऋषियों का अवतार हुआ है। बोलते हैं कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमारों ने अवतार ग्रहण कर लिया और उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग जाओ सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि भगवान ये हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग तो भगवान का भजन ही करते रहेंगे। तो हम लोग भी जब सनकादि ऋषियों ने भगवान का भजन स्वीकार कर लिया, भजन भगवान का भजन ही करते रहते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा बीच बीच में भगवान का नामस्मरण होता रहेगा तो हम लोग भी।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला चौबा के बिहारी मतवाला चौबा की बिहारी मतवाला चौबा के बिहारी मतवाला बिहारी मतवाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला चौबा के बिहारी मतवाला चौबा के बिहारी मतवाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला चौबा के बिहारी मतवाला चौबा के बिहारी मतवाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद
कृष्ण कन्हैया
सनकादि ऋषियों की जय सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चार प्रथम अवतार उनके बाद में वराह अवतार हुआ नारद जी नर नारायण कपिल भगवान का दत्तात्रेय यज्ञ यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी ऐसे 24 अवतार अपने यहाँ पर माने गए ऐसे भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार अपने यहाँ पर प्रसिद्ध हैं वेदानुद्धरते जगन्निहवते भूगोलमद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रं कुर्वते कोलस्त्यं जयते बलिं कलयते कारुण्यतान् मरते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः 24 अवतार और 10 अवतार, 10 अवतार प्रमुख रूप से और 24 अवतार विशेष रूप से, और 24 अवतार अपने भगवान ने 24 अवतार जो ग्रहण किए हैं, 22 अवतारों का यहाँ पर वर्णन है, और एक हंस और नीलग्रीव ऐसे 24 अवतार हो जाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इन अवतारों की कथा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन की है, इसलिए ये पृष्ठभूमि बताते हैं। इदम् भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान वेद व्यास जी ने इस रचना की है और इसको रचना करके इसका नाम भागवत दिया है। तो सौनकादि ऋषियों ने थोड़ा प्रश्न किया कि भगवान हम ये क्या कहना पूछना चाहते हैं, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थानिम् वा केन हेतुनः कुतश्चेतिदः कृष्ण कृतवान् संहिताम् मुनि। हम ये प्रश्न पूछ करना चाहते हैं कि ये भागवत कस्मिन् युगे, कौन से युग में लिखी गई, स्थाने वा केन हेतुनः, किन प्रश्न है, कौन से युग में ये श्रीमद् भागवत निर्माण की गई, किस स्थान में और किस हेतु से, ये तीन प्रश्न है। और उन्होंने कहा कि सुखदेव जी महाराज तो केवल जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी ही देर में एक जगह ठहरते हैं, तो उन्होंने भागवत सुनने के लिए भागवत पढ़ने के लिए तो बहुत समय लगा होगा, उनका मैं ये श्रवण करना चाहते हैं हम लोग। सूत जी कहते हैं द्वापरे सनुप्राप्ते तृतीय युग परे, ये द्वापर का अंतिम समय, और उस समय भगवान वेदव्यास जी बद्रीनाथ में बैठे हुए, व्यास गुफा में बैठे हुए हैं और वहां पर पवित्र होकर के बैठे हैं, और उन्होंने विचार किया कि मैंने ये वेदों का विभाजन किया, इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं पहले वेद एक ही था, पहले वेद अलग अलग नहीं थे, सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद यजुर्वेद ये अलग अलग नहीं थे, ये व्यास जी ने इनको अलग अलग किया है और 17 पुराण बनाए, और 17 पुराण बनाने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, किसी बात से संतोष होना चाहिए। एक होता है परमात्मा का संतोष, ज्ञान का संतोष, ज्ञानी कितना ही बड़ा हो जाए परंतु उसको उस परमात्मा तत्व का अनुभव जब तक न हो तब तक उसको संतोष नहीं होता, तो उस समय उनको बड़ा ऐसा असंतोष था और बैठे बैठे विचार कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर कहते हैं कि भगवान व्यास जी बैठे हुए थे और आकाश मार्ग से उसी समय वहां पर नारद जी अवतरित हुए। अब जब नारद जी अवतरित हुए और नारद जी ने देखा कि नारद जी को देखा वेद व्यास जी ने और सामने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में दोनों का संवाद होता है। नारद जी पूछते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपका यहाँ पर पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मनः परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसयो वा, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन शुद्ध स्वस्थ है, कि नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा। वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान मैंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, वेदांत के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है, मैंने 17 पुराणों की व्याख्या की है, परंतु मुझे संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि भगवान आपने अभी तक भगवान के गुणों का वर्णन ऐसा नहीं किया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि आपको असंतोष है, इसी कारण से उन्होंने अपनी एक अपनी कथा कहना शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं पहले के जन्म में मैंने अहम पुराजको भवेद भवम मुने दास्यास्तु कश्चाच नर्वेदवादिनां निरोपितो बालोक एव योगिनां शुशुषणे तावृषि निर्विशनात्। कहते हैं कि भगवान मैं भी पहले एक दासी का पुत्र था। नारद जी आप जैसे देख रहे हैं नारद जी ऐसे नहीं है, नारद जी पहले दासी पुत्र थे, उनके बाद में वो बड़े भारी वो गायक बन गए। उनका नाम उपरहम नाम का एक उनका वो एक देवता थे, और उस समय अपनी पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि हम लोग, मैं पहले एक गांव में रहता था, मैं एक दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र होने के नाते मेरी छोटी सी आयु थी। मेरी माँ उस वहां पर दासी का काम किया करती थी, और एक दिन की घटना है कि वहां पर संतों की मंडली आई, और संतों की मंडली आई चातुर्मास करने के लिए। पहले के समय में चातुर्मास हुआ करते थे, अब भी होते हैं, अभी भी चार महीने के चातुर्मास बहुत से लोगों में होते हैं, बहुत अन्य अन्य धर्मों में भी होते हैं, हमारे यहां भी होते हैं, परंतु उस समय सभी के साथ में चातुर्मास हुआ करते थे। परंतु अब सन्यासी लोग दो ही महीने का चातुर्मास मानते हैं। इसका कारण क्या? भगवान श्री राम ने जब वो वनवास में थे तो संत वेश में थे, है ना, कहा जाता है ना, साधु वेश में थे ना, वलकलधारी थे, जटाजूट बढ़ाए हुए थे, और उस समय उनके सामने एक समस्या आई। सीता का हरण हो चुका था और उधर 14 वर्ष पूरे होने वाले थे, समय भी अधिक नहीं था, और सीता को वापस लाना था, और चातुर्मास चल रहा था। फिर या वहां पर एक मध्यम मार्ग निकला गया कि जो दिन और रात को मिला करके अलग अलग किया जाए और चातुर्मास उसका नाम रखा जाए। तो दो महीने का चातुर्मास तब से प्रारंभ हुआ सन्यासियों में, है ना, दो महीने के सन्यासी लोग दो महीने में चातुर्मास समाप्त करते हैं। तो कहते हैं कि चातुर्मास के लिए वहां पर अनेक संत आए, और गांव में कोई और सेवक नहीं था, तो गांव वालों ने उन संतों की सेवा में मुझे लगाया, नारद जी कह रहे हैं। और चातुर्मास चल रहा था, और चातुर्मास में नित्य श्राद्धय और प्रवचन होता है, प्रातःकाल वेदों का शास्त्रों का स्वाध्याय होता, सायंकाल सबके लिए प्रवचन होता, और ऐसे धीरे 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 चार महीने बीतने को आए। और उस समय जब संत लोग वहां से प्रस्थान करने लगे, संतों ने देखा कि इस बालक ने हमारी बड़ी सेवा की है, है तो छोटा सा बालक परंतु इसको कुछ देना चाहिए। अब संत क्या दे सकते हैं? संतों ने कहा कि हे बालक, तुम ये मंत्र ग्रहण करो, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशनाय च। ये नारद जी को ये मंत्र का उपदेश दिया, ये वासुदेव गायत्री दे दी, और वासुदेव वहां पर जा करके और संत लोग वहां से प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान कर गए और मैं अकेला हो गया। और कहते हैं कि उसी समय एक बार की बात है, मेरी माता गोद होने के लिए गई हुई थी, और जब गोद होने गई थी तो सर्प ने उसको डस लिया, सर्प दंश के कारण वो मेरी माता का प्राण त्याग हो गया और मैं अकेला रह गया। उस गांव में मेरा कोई काम था नहीं, मेरा कोई परिवार था नहीं, तो फिर वहां से मैं बाहर चला गया और एक वन में जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठा, सुंदर वहां पर तालाब था, और तालाब के किनारे जाकर के मैं बैठ गया, और वहां पर बैठ करके जो संतों ने मंत्र दिया था उसको जाप करने लगा। उस जाप करते करते एक ऐसा तेज पुंज प्रकट हुआ, और जो मेरे हृदय में आया, मैं बहुत देर तक उसका ध्यान करता रहा, और ध्यान करते करते मेरी समाधि खुल गई, और समाधि खुलने के बाद में मैंने देखा तो वहां पर कुछ नहीं। दोबारा मैंने ध्यान करने का बहुत प्रयत्न किया परंतु मेरा ध्यान लगा नहीं, और मैं बहुत बेचैन सा हो गया। उस समय मुझे लगा कि वो फिर से ध्यान लग जाए, फिर से परमात्मा का स्वरूप मेरे हृदय में आ जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और उस समय आकाशवाणी हुई, कथा का प्रसंग है, उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, हे दासी पुत्र, इस जन्म में तुम्हें आप दोबारा मेरा ध्यान लगेगा नहीं, मेरा दर्शन होगा नहीं, अब आगे वाले आने वाले युग में, आगे आने वाले तुम्हारे उस समय तुम्हारी उत्पत्ति होगी, और उस समय तुम मेरा भजन कर सकोगे। और इतनी अपनी बात कह करके और नारद जी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, मेरा कार्य हो गया और आपने आप अब इस परमात्मा का आप भजन ध्यान करते रहे और परमात्मा के विषय में आप लीला की रचना करो। जब नारद जी ने कहा तो व्यास जी ने कहा कि भगवान जिस लीलाओं का वर्णन मैं करना चाहता हूँ वो लीला तो भगवान ने अपने समेत ली है, अब वो तो चले गए हैं। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप तो महान हैं, आप तो समाधिस्थ होकर के आप उस लीलाओं का दर्शन करो और उन लीलाओं का दर्शन करते हुए आप उसकी रचना करो। कोई ना कोई मार्गदर्शक आवश्यक है जीवन में, उसके बिना चाहे वेद व्यास जी भी हो उनको भी नारद जी ने जो बतलाया कि आप तो साक्षात परमात्मा के अंश हो, साक्षात अवतार हो, आप भगवान का नाम स्मरण करते जाओ और आप लीलाओं को लिखते जाओ। इसलिए और भगवान वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखा, कौन सा? श्रीमद् भागवत, जिसका नाम है। इस ग्रंथ का लेखन किया और लेखन करने के बाद में वेद व्यास जी ने विचार किया कि इसको पहले किसको सुनाया जाए, पहले किसको श्रवण कराया जाए। तो विचार किया, आपके जैसे कुछ लोग वहां पर भक्त बैठे होंगे कि महाराज इसको सबसे सुनने का जो पात्र है वो आपके ही तो पुत्र हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। उनको, अरे वो तो संन्यास लेके चला गया है वन में, अब वो कैसे आएगा उस श्रवण करने के लिए? कहा कि आ सकता है, आपके जैसे कुछ लोगों ने उनको ये भी सलाह दी कि ऐसा करो, इसके कुछ अच्छे श्लोक ऐसे ब्राह्मण बालकों को रटा दो और जहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ हैं वहां पर वो सुना देंगे। तो अनायास ही सुखदेव जी की महाराज के हृदय में परमात्मा का स्वरूप चला जाएगा और सुखदेव जी महाराज आपके पास में आ जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। सलाह किसी की अच्छी हो तो मान लेनी चाहिए, अच्छी बात हो ना तो मान लेनी चाहिए। तो व्यास जी ने भी कहा कि अच्छी बात है, दो सुंदर सुंदर पटुकों को दो मंत्रों का उच्चारण सिखाया बड़े संगीत में, बड़े सुंदर, और कहा कि जहां पर भी सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ हैं वहां जाकर के बैठ करके ये दो श्लोक उनको कहना, और अगर पूछे तो कहना कि हमें ये दो ही श्लोक आते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है, और बाकी आप दूसरी बात कहना कि वो जो कहना। तो उस समय वो दो ब्राह्मण बटुकों को वहां से ये सुंदर श्लोक उनको रटाए और जहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ थे एक शिला पर बैठ करके दोनों बालक बड़े सुंदर सुरीले कंठ से उस श्लोक का वहां पर गान कर रहे हैं।
बरहा पीरम नटवर करणियो करणिकारो बिभ्रद्वासौ कनक कपिशौ वैजयौ सिंचमाला रंधान्वेणो हृदय सुधया पूर्ययन गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमण प्राविश गीत की
दो श्लोक वहां पर बहुत सुंदर कंठ से कहे गए और दो श्लोक श्रवण करने के बाद में उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं क्या वो यहां है कि बाहर है। उनकी समाधि खुल गई और समाधि खुलने के बाद में पुनः पुनः वही श्लोक उनके कानों में आ रहे हैं, वो सुनाई पड़ रहे हैं। उसी समय उनके नेत्र खुलते हैं, बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि दो बालक ये मंत्र का बार बार पाठ कर रहे हैं। उनके पास में जाते हैं सुखदेव जी महाराज और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे बालको, ये श्लोक तुमने कहां से सीखे। उन बालकों ने कहा कि आपके पिताश्री ने, भगवान वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोले और सुनाओ। बोले हमें तो दो ही श्लोक आते हैं, बाकी उनको आते हैं। वहां पर भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई उनको कि मेरे पिताजी ने ऐसी श्रीमद् भागवत लिखी है, उसका अधिकारी तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसी अगर कोई रचना की है उसका अधिकारी मैं हूं। और अधिकार को लेकर के वहां पर जाते हैं और अपने पिताजी के चरणों में बैठ करके कहते हैं कि भगवान, जो कभी आ नहीं रहे थे बुलाने पर भी वो वन में चले गए थे, भगवान के स्वरूप का जब उनके भीतर दर्शन हुआ शब्द के माध्यम से, उन शब्दों को पुनः विस्तारित रूप से आकर के उन्होंने श्रवण करने के लिए पिताजी के सामने बैठे और कहा कि मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूं। और उस समय भगवान वेदव्यास जी ने वो भागवत श्रवण कराए किसको, सुखदेव जी महाराज को। ये भागवत की लंबी परंपरा है। भगवान नारायण इस भागवत को चतुश्लोकी भागवत के रूप से आगे आएगा वो ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही, नारद जी ने वेदव्यास जी को कही और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को कही, सुखदेव जी ने किसको कही, राजा परीक्षित को कही। और अब सब लोग सबको कह रहे हैं, बड़ी भागवत की पुरानी परंपरा। और उस समय कहते हैं कि उसी समय सुखदेव जी महाराज और उस समय कहे कि इसका हेतु दूसरा क्या है, तो कहते हैं कि ये जो परीक्षित राजा को जो कथा श्रवण कराई उसका मैं कुछ जानना चाहता हूं। कहते हैं कि यहां पर सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई और उस समय दुर्योधन कहरा रहा था और दुर्योधन के पास में दुर्योधन का मित्र जो अश्वत्थामा जन का नाम था, द्रोणाचार्य का पुत्र, वहां गया। हे मित्र, तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करना चाहता हूं। बोले कैसे निवारण, मैं उसने अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांडवों का वध करके तुम्हारे सामने लाऊंगा। बोले ऐसा हो सकता है, रात्रि के समय में अश्वत्थामा चला जाता है शिविर में, पांडवों के शिविर में, परंतु भगवान को सब पता है, भगवान किसी कारण से पांडवों को कहीं और ले गए थे, वो शिविर में पांडवों के पुत्र सोए हुए थे और वहां पर अश्वत्थामा ने जाकर के उन पांडव पुत्रों का वध किया और आकर के ला करके दुर्योधन को जब दिया, उस समय दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने कहा कि ये सबसे ज्यादा मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरा जो वैर है वो अधिक भीम के साथ में है, इसलिए जो सबसे बड़ा जो सर है वो मुझे दे दो। और जैसे ही सबसे बड़ा जो सर था वो दुर्योधन के हाथ में आया, उसने जब उसको मुक्का मारा तो वो वहां पर टूट गया। उसने कहा कि हे अश्वत्थामा, तुमने ठीक नहीं किया, ये पांडव का सर हो ही नहीं सकता है, भीम का सर हो नहीं सकता है, हो सकता है उनके बालुका का होगा। अश्वत्थामा ने कहा कि आप कैसे इसको कह सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मैंने ऐसी बड़ी बड़ी लोहे की गदा भीम के सर में मारी थी, उसको कुछ नहीं हुआ था और मैंने उसको ऐसा दबाया, एक ही मुक्की से फट गया सर, ये उसका हो ही नहीं सकता है। और प्रातः काल हुई और उस समय सब वहां पर पांडव पुनः आए, उन्होंने देखा कि वहां पर हमारे पुत्रों का वहां पर वध हुआ है। और उसी समय प्रतिज्ञा की अर्जुन ने कि जिन्होंने मेरे पुत्र को मारा है, देखा कि ये अश्वत्थामा का कर्म है और अश्वत्थामा के पीछे जब अर्जुन ने दौड़ लगाई, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और फिर तो द्रौपदी के पास जब लाए, द्रौपदी के मन में करुणा आ गई। देखो मां का स्वभाव होता है, कहे कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए व्यथित हूं, जैसे मैं दुखी हूं, इसी प्रकार मारोदीयस्य जननी गौतमी पतिदेवता, बोलते हैं कि जो अशुत्था की मां है ये भी रुदन करेगी, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, इसको बारो नहीं, ये तो गुरुपुत्र हैं। भगवान श्रीकृष्ण वहीं पर थे, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा कि भगवान आप क्या करना चाहिए, भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अततायी वदारहण, और अततायी को मारना चाहिए, दोनों मेरी बात है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अततायी को मार ही देना चाहिए। इसलिए अब अर्जुन समझ गया कि भगवान क्या चाहते हैं। और उसी समय अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि लगा हुआ था, किसी श्रेष्ठ पुरुष का अगर अपमान करो वही उसकी मृत्यु होती है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी श्रेष्ठ पुरुष की अगर आप किसी का अपमान करो तो वही उसकी मृत्यु होती है। उसके एक उसका मस्तक में एक सुंदर मणि लगा हुआ था, उसको काट लिया, उसके मस्तक के जो बाल थे वो निकाली, अपमानित करके उसको छोड़ दिया गया। और अश्वत्थामा को जो अपमान महसूस हुआ, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र चलाने वो ब्रह्मास्त्र पूरे महाभारत में नहीं चला, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत में नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आज का एटम परमाणु आज भी एक ही बार हुआ है, नहीं नागासाकी में हुआ है, उसके बाद में बहुत लोगों के पास में कितने कितने हथियार है, उसका प्रयोग होता निश्चित है। उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उसको छोड़ने तो आता था, परंतु उसको उसका संहार करने नहीं आता था। और उस समय ये जलने लगी पृथ्वी, भगवान श्रीकृष्ण को पूछा अर्जुन ने कि भगवान मैं आप क्या करूं, भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि ऐसा करो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ मिल जाएंगे और तुम जानते हो उसका संहार करना, उसका उपसंहार करो, वो ब्रह्मास्त्र शांत हो जाएगा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र साथ में मिले और उसके बाद में अर्जुन ने दोनों को ही अपने संहार कर लिया और ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। और उसके बाद में अश्वत्थामा को लगा और अश्वत्थामा ने फिर एक अस्त्र छोड़ा और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक, और उस समय वहां पर छोड़ा और वहां पर पीड़ित होकर के जो वहां से उत्तरा जो वहां से भगवान का स्मरण करती हुई आई, और भगवान ने उस समय कृष्णाय वासुदेवाय उस समय भगवान का स्मरण किया, और भगवान ने वहां पर गर्भ में जाकर के उस जो अर्जुन की वंश परंपरा थी उसका वहां पर गर्भ में उनका रक्षण किया है। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि अब हमें अब जाना चाहिए, महाभारत युद्ध तो संपूर्ण हुआ है, आप लोगों को राज्य की प्राप्ति हो गई है, अब मैं जाना चाहता हूँ। कहा कहते कि मैं अपने द्वारिका जाना चाहता हूँ। सब लोगों ने कहा कि और थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। कुंती माता ने बहुत सुंदर स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और कुंती ने एक और स्तुति की, विपद संतु शशुदत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यासत, बोलते हैं कि आप हमें बार बार दुख देते रहो, एक ही ऐसी भक्त हैं जिसने अपने लिए सुख नहीं मांगा, क्या मांगा, दुख मांगा, इसलिए कि दुख में भगवान ज्यादा स्मरण होते हैं, ज्यादा याद आते हैं, इसलिए आप और भगवान वहां पर रुक जाते हैं। और भगवान जब रुक गए उस समय फिर से भगवान ने किसी कारण से रुके थे, पता था कि मेरा एक भक्त अभी भी शरशय्या पर लेटा हुआ है और भगवान उनके पास में पुनः जाते हैं और भीष्म पितामह लेटे हुए हैं उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वहां पर पांडवों को लेकर के भगवान श्रीकृष्ण उनके पास जाते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं और अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हैं भीष्म पितामह। और तब तक थोड़े ही दिनों में उत्तरायण प्रारंभ होने वाली है और उस समय उत्तरायण जब प्रारंभ होती है उस समय भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह स्तुति करते हुए अपने आप को ब्रह्म में लीन करते हैं और भगवान अब कहते हैं कि मैं अब द्वारका की ओर प्रस्थान करता हूं। और सब लोग पुनः पुनः उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कुछ दिन रुक जाए, और कुछ दिन रुक जाए। भगवान ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं द्वारका की ओर प्रस्थान करता हूं। भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, पांडव लोग सब उनको छोड़ने जाते, बहुत दूर तक छोड़ने गए। पांडवों ने कहा कि भगवान आपके बिना हम कैसे रहेंगे, हम आपके साथ चलते हैं। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ने मैं आऊंगा, मैं फिर आप मुझे छोड़ने आना, ये कब तक चलेगा। अरे आप लोग अपना राजकाज करो, आप लोग चले जाओ, राजकाज ठीक से संभालो। और उसके बाद में भगवान का गमन होता है द्वारका की ओर, भगवान का आगमन होता है द्वारका जी में और द्वारकावासी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के वहां पर भगवान के स्वागत में थोड़ा सुंदर वहां पर गीत भी गाए होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि एक गीत हमारा विमल भाई भी भगवान के स्वागत में द्वारका में गाए। और उसके बाद में आज के इस सत्र की हम लोग यहां पर विराम लेंगे। तो भगवान का
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
हरि बोल
शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कृष्ण
स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
बोलो द्वारिका
भीष्म की जय।